परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओं, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
वंदे प्रभु, वंदे जीवन को वचनामृत दे दे शरणागत को अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह, धन्य प्रभु, अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह, धन्य प्रभु, वंदे प्रभु, वंदे मसीह।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और उन मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने का कारण था अन्य जातियों का उद्धार पाने का अवसर देना। पौलुस अब इसकी चर्चा हमें करता है। रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, सो मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों का उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। दूसरे शब्दों में क्या उन्होंने गिर जाने के लिए ठोकर खाई थी? ऐसा कभी न सोचे। कारण यह नहीं था, उनके चूक जाने के कारण अन्य जातियों को उद्धार पाने का अवसर मिल गया कि इसराइल को जलन हो। मेरे मित्रों, पौलुस इस पद में भी पद एक की नाई जिज्ञासा का प्रश्न करता है। आपको स्मरण होगा कि पद एक में उसने पूछा था, क्या परमेश्वर ने अपने प्रजा को त्याग दिया है? परंतु यह त्याग आंशिक एवं कुछ समय के लिए है। अब उसका प्रश्न है, क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई कि कभी न उठ पाए? इसका उत्तर प्रबल नकारात्मक वाक्य है। उनके ठोकर खाने से परमेश्वर को अवसर मिला कि वह अन्य जातियों के लिए द्वार खोल दे। यहूदी अन्य जातियों के उद्धार की सच्चाई को देखेंगे और वे देखेंगे कि अन्य जाति भी परमेश्वर की आशीषों के वारिस हो गए हैं, जिन्हें वे सोचते थे कि केवल यह उन्हीं के लिए है। यह ईर्ष्या नहीं जलन उत्पन्न करेगी। इसराइल भ्रमण में बहुत सारे लोग जाते हैं और अनेक यहूदी उनके मार्गदर्शक होते हैं। जब वे उनसे मिलते हैं कि ये लोग इसराइली लोगों से बहुत रुचि रखते हैं तो वे बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। सच बात है कि कोई जब आए और इसराइलियों के बारे में पूछताछ करे तो उन्हें आश्चर्य होती है। मिस्र के पिरामिड को भी देखें, परंतु इसराइल देश में जो रुचि है वह आप अन्य देश में नहीं देखते हैं। यहूदी इसे समझ नहीं पाते हैं। एक यहूदी मार्गदर्शक ने किसी से पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि इन बातों का आपके लिए इतना अधिक महत्व क्यों है? जी हां, आज तक भी वे इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि मसीह यीशु उनके उद्धार के लिए आया। हम रोमियो के पत्र 11 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, सो यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ तो उनकी भरपूरी से कितना ना होगा। परमेश्वर इस समय इसराइल राष्ट्र के साथ व्यवहार नहीं कर रहा है। जिस दिन परमेश्वर उनके साथ व्यवहार करने लगेगा उस दिन से उनकी अरब समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे मित्रों, उनके संघर्ष का अंत हो जाएगा। इसराइल भयभीत न रहेगा क्योंकि परमेश्वर ने अति स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक मनुष्य शांति और सुख चैन में वास करेगा। मीका की पुस्तक 4 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे मित्रों, इसराइल के क्षणिक त्याग के कारण अन्य जातियों को अनुग्रह पाने का अवसर मिला तो जब इसराइल को पुनः स्वीकार किया जाएगा तब अन्य जातियों का क्या होगा? वह वृद्धिमान होगी। यरूशलेम की महासभा में याकूब ने इसका स्पष्टीकरण किया था। उसने कहा कि परमेश्वर इसराइलियों की नाई अपने नाम के निमित्त अन्य जातियों को भी बुला रहा है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 16 और 17 पद में परमेश्वर ने कहा, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जातियां जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। कभी कभी मेरी बातें लोगों को अचंभित करती है। जब मैं कहता हूं कि संसार की सबसे बड़ी जागृति कलीसिया से पूर्व की थी, योना नामक भविष्यवक्ता ने देखा कि संपूर्ण निनवे नगर में अपने कुकर्मों से मन फिराया है, वे परमेश्वर की ओर उन्मुख हो गए थे। निसंदेह पेंतिकोस्त के दिन भी एक महान जागृति आई थी, कलीसिया का आरंभ, परंतु कितना प्रतिशत? पेंतिकोस्त एक ऐसा पर्व था जिसमें प्रत्येक यहूदी पुरुष को आना अनिवार्य था। इसका अर्थ यह हुआ कि यरूशलेम में लगभग लाखों लोग उपस्थित रहे होंगे। उनमें से कितनों ने उद्धार पाया। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि लगभग 10,000 मनुष्यों के मन फिरे। यह तो बहुत ही छोटी संख्या है। उसके बाद ही कि सबसे बड़ी जागृति हवाई द्वीप समूह में आई थी 50%, परंतु यह भी योना के युग में निन्वे की जागृति की तुलना में बहुत कम था। मेरे विचार में संसार की सबसे बड़ी जागृति तब आएगी जब कलिसिया पृथ्वी से कूच कर जाएगी। कलिसिया ने अच्छा काम नहीं किया है। कलिसिया के कूच कर जाने के बाद असंख्य अन्य जातियां मसीह को ग्रहण करेंगी, जो महाक्लेश में ही नहीं प्रभु के 1,000 वर्षीय राज्य में भी होगा। असंख्य जन प्रभु के राज्य से खुश होकर परमेश्वर के निकट आ जाएंगे। मित्रों, मैं पूरे मन से इस पर विश्वास करता हूँ। रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ कि जब मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों से जलन करवा कर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। मेरे मित्रों, मेरा अनुवाद शायद इन पदों को समझने में आपकी सहायता करे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं अन्य जाति विश्वासियों, क्योंकि मैं अन्य जातियों में प्रेरित हूं, मैं अपनी सेवा को सराहना करता हूं। यदि मैं किसी प्रकार से अपने जाति भाइयों में जलन उत्पन्न कर पाऊं और उनमें से कुछ को बचा लूं, इसका मतलब यह है। दूसरे शब्दों में पौलुस कहता है कि मैं अन्य जातियों में प्रचारक हूं और यह मेरे लिए आनंद की बात है, परंतु अन्य जातियों में प्रचार करते हुए भी मुझे आशा है कि मैं अपनी जाति के अनेक भाइयों को मसीह में लाने का कारण ठहरूं। आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा था, 1 कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 20 पद में, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं, जो लोग व्यवस्था के अधीन है उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। मेरे प्रियो, यही कारण था कि पौलुस अपना सिर मुंडा कर मन्नत के अधीन यरूशलेम गया था। वह अपने लोगों को मसीह में लाना चाहता था। क्या अनुग्रह के अधीन रहकर उसे यह सब करना था? कुरिन्थ की कलीसिया को वह आगे लिखता है 1 कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय के 21 पद में, व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। दूसरे शब्दों में वह मसीह का आज्ञा पालन कर रहा था। उसके बाद वह कहता है 1 कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय के 22 पद में, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मेरे प्रियो, वह सर्वप्रथम अन्य जातियों में अपना उत्तरदायित्व निभा रहा था और इस प्रकार वह अपने यहूदी भाइयों को मसीह में खींच लाना चाहता था। कुछ यहूदी अवश्य मसीह में आ गए थे, परंतु बहुत ही थोड़े लोग थे। इस सब बातों में पौलुस अपनी सेवा निभा रहा था और परमेश्वर उस युग के यहूदियों और अन्य जातियों में अपना उद्देश्य पूरा कर रहा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने में पौलुस को जो संतोष प्राप्त होता था उसे मैं अंतर ग्रहण कर सकता हूँ। परमेश्वर के पास आपके लिए स्थान है। वह संभवतः चाहेगा कि आप संडे स्कूल में पढ़ाई, कोई व्यक्तिगत कार्य करें और व्यवहार द्वारा मनुष्यों तक पहुंचे, और वह आपके द्वारा किसी प्रचारक की सहायता करना चाहे। काम जो भी हो, आपको महान संतोष प्राप्त होगा जब आप परमेश्वर की बुलाहट पर विश्वास करके उसे पूरा करेंगे, उसके लिए कार्य करेंगे, उसको आदर देंगे। रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा? मेरे प्रियो, भविष्य का अनुमान लगाना एक विचित्र बात है। मेरे विचार में महान दिन आने वाले हैं। मानवीय दृष्टिकोण से भविष्य अंधकारमय है। मनुष्य ने तो संसार में अव्यवस्था फैला रखी है। मैं एक व्यापारी से बात कर रहा था और मुझे उससे बात करके दुख हुआ। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, परंतु वह भविष्य के बारे में आशा से रहित था। अनेक बुद्धिजीवी हमारी सभ्यता में भविष्य के बारे में निराश हैं, परंतु मेरा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और वह सब ठीक कर लेगा। अच्छे दिन अभी भविष्य में आने वाले हैं। ओह, परमेश्वर की संतान का कैसा महिमामय भविष्य होगा। यदि मैं मर्यादित प्रचारक नहीं होता तो मैं हल्लेलुया अवश्य कहता। मेरे मित्रों, रोमियो की पत्री 11 अध्याय के 16 पद में हम पढ़ते हैं, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरे तो डालियां भी ऐसी ही हैं। आपको स्मरण होगा कि गिनती की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा, अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने पहले गूंथे हुए आटे में से यहोवा को उठाई हुई भेंट दिया करना। गूंथे हुए आटे का एक अंश परमेश्वर को चढ़ाया जाता था, जो इस बात का प्रतीक था कि वह पूरा आटा परमेश्वर द्वारा ग्रहण किया जा चुका है। मेरे प्रियो, पहला फल राष्ट्र के उदय को दर्शाता था, अब्राहम, इसहाक और याकूब। पवित्र का अर्थ नैतिकता के संदर्भ में नहीं है, पवित्र होने का अर्थ है परमेश्वर के लिए पृथक किया जाना। यह पहला फल और आटे का एक अंश परमेश्वर के लिए पृथक किया जाता था तो पूरी फसल का क्या किया जाता था? क्योंकि अब्राहम, इसहाक और याकूब परमेश्वर के लिए पृथक किए गए थे तो राष्ट्र के साथ क्या होना था? वह पूरा का पूरा परमेश्वर का था। इसराइल के साथ परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है और उसे पूरा करना है। रोमियो की पत्री 11 अध्याय के 17 पद में हम पढ़ते हैं, और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। मित्रों, आप और मैं इसराइल राष्ट्र के कारण लाभ उठा रहे हैं। यही कारण है कि मैं यहूदी विरोधी नहीं हूं, मैं उस राष्ट्र का ऋणी हूं। रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 18 और 19 पद में लिखा है, तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। जैतून का वृक्ष इसराइल राष्ट्र का प्रतीक है और जंगली जैतून कलीसिया है। आपका और मेरा सर्वस्व इसी तथ्य पर आधारित है कि परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को बुलाया है और उस राष्ट्र से मसीह का उदय हुआ है जो हमारा प्रभु एवं उद्धार करता है। रोमियो की पत्री 11 अध्याय के 20 पद में लिखा है, भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय कर। मेरे प्रियो, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वे अपने अविश्वास के कारण त्यागे गए थे। आप अपनी योग्यता के द्वारा परमेश्वर के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते, न ही कलीसिया की सदस्यता के कारण, न ही नैतिकता के कारण। आपका आधार एक ही है, मसीह यीशु में विश्वास। अब पौलुस की चेतावनी को देखें। पौलुस चेतावनी देता है, रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ी तो तुझे भी न छोड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने ईश्वर त्यागी राष्ट्र को रख छोड़ा तो वह ईश्वर त्यागी कलीसिया को क्यों कर रख छोड़ेगा? मित्रों, मुझे अधिकाधिक विश्वास होता जा रहा है कि दर्शन शास्त्र यह या रीतियों पर आधारित या लौदिकिया की नाई कलीसियाई महाक्लेश में प्रवेश करेगी। डॉक्टर जॉर्ज गिल कहा करते थे, विश्वासियों के बादल में उठाए जाने के बाद कुछ कलीसियाओं में रविवार की आराधना में पूरी उपस्थिति होगी। यह लौदिकिया की कलीसिया है। इसके विपरीत प्रभु फिलाडेल्फिया की कलीसिया से कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय के 10 पद में, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मेरे प्रियो, प्रभु उस समय हर एक कलीसिया की महाक्लेश में रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है, जो परमेश्वर के वचन के प्रसारण के लिए द्वार खुली रखती है। प्रियो, मैं उस कलीसिया का सदस्य हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी हैं। यह विश्वासियों की अदृश्य देह है, यही वह कलीसिया जो मसीह से मिलने के लिए बादलों में उठाई जाएगी। यह महाक्लेश से पूर्व की घटना होगी। आइए आगे देखें, इसराइल का पुनः स्थापन। अब हम देखेंगे कि इसराइल राष्ट्र का पुनः स्थापन विपुल आशीषें लाएगा। रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 22 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। ये शब्द कठोर हैं। पौलुस अन्य जातियों को पुकारता है कि वे दो उदाहरण सुने। इसराइल परमेश्वर की कठोरता को प्रकट करता है, जबकि प्रभु को ग्रहण करने वाले अन्य जातियों पर परमेश्वर की भलाई प्रकट हुई है। आज परमेश्वर के ये दो पक्ष प्रकट होना आवश्यक है, मसीह के त्याग और पाप के लिए परमेश्वर का दंड तथा मसीह में विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह। मेरे प्रियो, इसराइल को परमेश्वर का जो दंड मिला उसका संपूर्ण चित्रण पौलुस ने नहीं देखा था। सन 70 में यरूशलेम का विनाश और उसके बाद की घटनाएं एक भयावह कहानी है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति लापरवाही न करें। यह वह अनुग्रह है जो हमें परमेश्वर के परिवार में लाया है और हमें अनेक सौभाग्य प्रदान किए गए हैं। 2010 वर्ष पूर्व के बाद अन्य जाति कलिसिया यदि इसराइल से अधिक नहीं तो उसके बराबर भी विफल हुई है। रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 23 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और वे भी यदि अविश्वास में न रहें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर ने अयोग्य अन्य जातियों को स्वीकार किया है, इसलिए वह निश्चय ही इसराइल को भी स्वीकार करेगा जिसमें उन्हीं की भांति योग्यता नहीं है। शब्द है फिर यहाँ मुख्य शब्द है। परमेश्वर फिर से इसराइल का पुनः स्थापन करेगा। पुराना नियम स्पष्ट करता है कि इसराइल फिर से परमेश्वर की शरण आ जाएगा। उदाहरण के रूप में देखें यर्मिया की पुस्तक 23 अध्याय उसके 3-8 पद में इसराइल के पुनः स्थापन की असाधारण भविष्यवाणी में से एक है। जकरिया 12 उसके 10 पद में, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे तुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। मित्रों, वह दिन प्रायश्चित का महान दिन होगा। वे पश्चाताप करते हुए परमेश्वर की ओर उन्मुख होंगे और परमेश्वर उनका उद्धार वैसे ही करेगा जैसे वह हमारा उद्धार करता है। उसके अद्भुत अनंत दया और अनुग्रह के द्वारा से ये सब कुछ संभव होगा। रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जलपाई में साटे क्यों न जाएंगे। मेरे मित्रों, पौलुस जैतून के वृक्ष के उदाहरण के द्वारा अपनी बात आगे बढ़ाता है। इसराइल जैतून का वृक्ष है और अब्राहम उसकी जड़ है। उसकी कुछ शाखाएं काट दी गई हैं। संपूर्ण राष्ट्र त्याग दिया गया है। परमेश्वर ने उसमें अन्य जातियों को साट दिया है। ये यहूदी विश्वास में आने वाली अन्य जातियां नहीं हैं, क्योंकि उन्हें भी व्यवस्था पालन ही करना होगा। उसने इसराइल को काट कर उसके स्थान पर कलीसिया को साटा है, जिसमें यहूदी और अन्य जातियां दोनों हैं। वे विश्वास के द्वारा सीधे अब्राहम से जुड़ गए हैं। यदि परमेश्वर ने ऐसा किया है तो स्वाभाविक है कि वह उसकी अपनी शाखाएं भी उसमें साटेगा, अर्थात जोड़ेगा। दूसरे शब्दों में वह इसराइल को सदा के लिए नहीं त्यागेगा। रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, इसका आरंभ परमेश्वर द्वारा कलीसिया की बुलाहट से ही हो गया था। प्रेरितों के काम अध्याय 15 उसके 14 पद में लिखा है, शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहले अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की, उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। परमेश्वर का यह काम कलीसिया के उठाए जाने तक चलता रहेगा। पृथ्वी पर जब तक कलीसिया रहेगी, इसराइल की कठोरता और अंधापन बना रहेगा। मेरे प्रियो, हमें यहाँ भेद शब्द के विषय चर्चा करना आवश्यक है। पौलुस के युग में गुप्त धार्मिक अनुष्ठान होते थे, परंतु यह किसी ऐसे व्यक्ति या तंत्र के लिए काम में लिया जाता है जो प्रकट रूप से सामने नहीं आता है। धर्मशास्त्र में यह इन दोनों ही तंत्रों से संबंधित नहीं है। नए नियम में गुप्त से तात्पर्य है जो अब तक अप्रकट है वह प्रकट हो गया है। यहाँ भेद की बात तो यह है कि अन्य जातियों की परिपूर्णता तक इसराइल की कठोरता बनी रहेगी। यह पुराने नियम में प्रकाशन का विषय नहीं था। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि इसराइलियों के लिए भी मौका है कि वे फिर से पुनः स्थापन किए जाएंगे, उन्हें भी मौका मिलेगा। आज आपके लिए बार बार मौका है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। आज आपके लिए मौका है कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लें। हो सकता है कि कल आपको समय न मिले, क्योंकि यह जीवन बहुत कीमती है। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें, उससे कहें, प्रभु मैं आपके वचनों के अनुसार आपके निकटता में अपना जीवन जीना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता करें। पिता परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे एवं सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
पाक मोहब्बत सूली चढ़ दे, फिर भी ओ सच कैन न डर दे। ऐसा उसने सबक पढ़ाया, दिल विच होर न आया जाया। जाहर बातन दिसदा चन, रही न मेरी नामो निशान। हुण मैं जिउंदा नहीं मर गया, शाम है तू है सहर। सजना तू ही हो, तू मैं नहीं, मुझ विच दिसदा मेरा माही। तेरी गली तेरा शहर, तू शाम है तू है सहर।